हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी सिद्धार्थ ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ कहा, हाँ अगर दादी सहमत हैं तो तुम यहाँ रह सकती हो, कोई मसला नहीं है। सिद्धार्थ ने अभी भी अपनी फाइल में ही देखकर ये बात बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के मुंह से ये बात सुनकर आकांक्षा को अपने मन में खुशी महसूस हुई। अभी थोड़ी देर पहले उसे लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ उसे पसंद नहीं करता है, उसकी वो घबराहट और बेचैनी दूर हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आकांक्षा को गहरे संकट नजर आने लगे थे, क्योंकि झलक अब उनके आसपास रहने वाली थी। उससे पहले झलक सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और वैसे भी झलक का दादी के साथ व्यवहार अच्छा था। दादी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थीं, और उसके बच्चे के चले जाने के बाद अब दादी उसे अपनी पोती बनाना चाहती थीं। कहीं ना कहीं आकांक्षा सोच रही थी, पता नहीं इस कमीनी झलक के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि ये खुराना परिवार को इस तरह से अपने वश में कर लेती है और सब के सब इसके इशारों पर नाचते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात ये थी कि सिद्धार्थ की और उसकी अभी अभी सगाई हुई थी, और अगर जरा सी भी चूक हो गई तो झलक आसानी से सिद्धार्थ और उसकी सगाई को बर्बाद कर सकती थी, क्योंकि झलक के पास आकांक्षा से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा था। फिलहाल उसे इसी बात की खुशी थी कि सिद्धार्थ ने उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी थी, और दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रही थीं। तब नैना ओबेरॉय ने अपनी बेटी की ओर प्यार से देखकर कहा, तुम दादी की देखभाल के लिए यहीं रुक जाओ, मैं आज रात किसी को तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर भेज दूंगी। ऐसा कहकर उसने अपनी बेटी के कंधे को थपथपाया, साथ ही साथ शातिर अंदाज में आंखों से सिद्धार्थ के करीब रहने का उसे इशारा किया था। उसके बाद जल्दी ही आकांक्षा ने अपनी माँ को एक मुस्कान देते हुए गले से लगाया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, ठीक है माँ। और जल्दी ही नैना ने अपना बैग उठाया और सिद्धार्थ को अभिवादन किया, फिर अपनी ऊंची एड़ियों वाले जूते पहनकर वहां से चली गई थीं। अस्पताल से निकलते समय नैना ओबेरॉय ने अपने पति को फोन किया और जल्दी से घर आने को कहा था। आधे घंटे बाद जल्दी ही उसका पति घर पहुंच चुका था, जहां पर उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जल्दी ही ईशान ने अपना सूट जैकेट उतारा और नैना की ओर चल दिया था और फिक्र भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तब नैना गुस्से से अपने पति की ओर देखकर नाराजगी जाहिर करके बोली, और क्या हो सकता है, मेरे गुस्से और नफरत की वजह वो झलक है और कोई नहीं, उसने हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। तब ईशान मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन इस बार उसने क्या किया? नैना चिढ़ते हुए बोलती है, झलक उर्वशी खुराना की पोती बन गई है, इतना ही मुझे बताओ, ये जंगली लड़की कितनी अच्छी किस्मत वाली है। गुस्से से दांत पीसते हुए नैना ने अपना बैग सीधा ईशान की बाहों में फेंक दिया था और बुरा भला कहने से खुद को रोक नहीं सकी। काश मुझे पता होता कि ये लड़की फ्यूचर में आकर हमारे लिए इतनी सारी मुश्किलें पैदा करेगी तो हमें उसे मार देना चाहिए था। वेल, झलक को पहले से ही पता था कि उसके असली माता पिता को ओबेरॉय परिवार ने ही घायल करने के लिए किसी को काम पर लगा रखा था, लेकिन अब उर्वशी खुराना की पोती बनने के बाद पुराने परिवार में अगर वह रहेगी तो इससे सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा को ही नुकसान होगा, और अगर उर्वशी खुराना ये बात पूरी दुनिया में लाइव कर देती है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब आकांक्षा के लिए उन्होंने एक सरल रास्ता बनाने के बारे में सोच लिया था। वहीं दूसरी ओर झलक मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी में चली गई थी। ये कंपनी आर्यन की कंपनियों में से एक थी। जैसे ही झलक वहां पहुंचकर आर्यन के सामने खड़ी होकर और उसकी ओर देखकर आवाज ऊंची करके बोली, आखिरकार तुम मुझे यहां क्यों बुलाना चाहते थे, बताओ क्या काम करवाना चाहते हो तुम मुझसे? जैसे ही झलक वहां पहुंचकर आर्यन के सामने खड़ी होकर और उसकी ओर देखकर तीखी नजरों देखकर झट से बोली, अब बताओ तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? अब झलक को अपने सामने देखकर आर्यन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट खिल गई और वो एक्साइटेड होकर बोला, अच्छा चैंप तुम आ गई हो, पहले थोड़ी देर बैठकर आराम तो कर लो, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, आखिरकार पहले हम दोस्त हैं। जैसे ही आर्यन ने बोला, झलक ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उसकी ओर देखा और एकदम से बोली, ओ रियली, तुमने मुझे यहाँ क्या दोस्ती निभाने के लिए बुलाया है? देखो आर्यन, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, तो प्लीज तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। अब ये बताओ ना, तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? जैसे ही झलक ने ये पूछा, आर्यन ने गहरी नज़र झलक के ऊपर डाली और फिर उसकी ओर खुशी से देखकर हड़बड़ाकर बोला, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरी कंपनी में काम करो। मैं जानता हूँ कि अभी तक तुम्हारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई के साथ साथ इस कंपनी में भी काम करो, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं। जैसे ही आर्यन ने कहा, झलक का दिल एकदम से भर आया था, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए इतना सोच रहा था। अचानक झलक ने आर्यन की ओर गहरी और अपनेपन से देखा और झलक ने बेहद शांत आवाज में बोली, देखो आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है और शायद तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपनी कंपनी को एक नई दिशा देनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें मुझे यहाँ रखना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम मुझे एक अनप्रोफेशनल लड़की को अपने यहाँ काम पर रखोगे, तो मुझे लगता है कि इससे तुम्हें सिर्फ घाटा ही होगा, कोई मुनाफा नहीं होगा। अब झलक की बात सुनकर आर्यन थोड़ा सकपका गया और फिर अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बेफिक्र होकर बोला, देखो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, तुम आज से ही यहाँ काम करोगी, मतलब यही काम करोगी, ठीक है? ये बोलकर जैसे ही उसने अपना डिसीजन सुना दिया था, अब झलक को हैरानी हुई कि वो आर्यन से बोले तो बोले क्या, क्योंकि उसने सिद्धार्थ खुराना वाली बात अभी नहीं बताई थी और वैसे भी सिद्धार्थ खुराना ने एक दिन का उसे 10,000 रुपए देने की पेशकश की थी, जिससे वो आसानी से अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती थी। और उर्वशी, जिन्होंने उसे अपनी पोती बनाने का फैसला किया था, एक गोद ली हुई पोती, तो कहीं ना कहीं झलक कन्फ्यूजन का शिकार हो रही थी, लेकिन वो आर्यन का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। तब झलक को इस तरह गंभीरता से सोचते हुए देखकर आर्यन हल्की सी स्माइल करके बोला, हे, क्या हुआ, कहाँ खो गए हो तुम? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तब झलक ने अपने हाथ पैर हिलाए और मुंह बिचकाते हुए बोली, आर्यन, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात के बारे में एक बार और सोचना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। यार देखो, मैं अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर झलक बिना आर्यन की कोई बात सुने तुरंत वहाँ से नीचे आ गई थी। अब आर्यन कुछ देर सोचता रहा, वहीं जैसे ही बाहर आई और अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी, ठीक उसी वक्त उसके सामने आर्यन आ गया था। झलक आर्यन को सवालिया नजरों से देखने लगी थी। आर्यन उसे फुसला कर बोला, आओ मेरे साथ। ये बोलकर आर्यन जल्दी ही झलक को एक बार फिर ऑफिस में ले आया और होले से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम आज के बाद यहाँ की मैनेजर बनो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम आसानी से सब कुछ मैनेज कर सकती हो।
अब आर्यन का खुद पर इतना ज्यादा आत्मविश्वास देखकर झलक जज्बाती होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उस वक्त आर्यन को जवाब दे तो क्या दें। फिलहाल गहरी सांस लेते हुए उसने इस बारे में सोचा कि अभी के लिए उसे आर्यन का साथ मान लेना चाहिए। वैसे भी आर्यन उसका काफी अच्छा दोस्त है, जो काफी ज्यादा मुसीबत में उसके साथ रहा है। उसने हमेशा उसकी मदद की है। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।